Om Shanti. Good morning. आज बाबा के 2 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में शिव बाबा कितना निरहंकारी है उसका साक्षात्कार होता है। जो बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। कैसे कर्जदार है? तो बाबा कहे, तुम बच्चे ईश्वर अर्थ जो करते हो, चाहे भक्ति में भी करते आए, अभी तो डायरेक्ट करते हो, तो बाबा पदम गुना देने के लिए बंदा है और इसीलिए बाबा तुम्हारा कर्जदार है। तो बाबा कहे, फ्राक दिल से करना चाहिए, क्योंकि कितने पदम इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहे, मन में फिर एक ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं, नहीं तो वो माइनस में चला जाता है। तो गुह्य गति भी बाबा समझाते हैं, साथ में हम बच्चों को यज्ञ सेवा के लिए भी प्रेरणा देते हैं। भक्ति में तो इनडायरेक्ट वे में किया तो भी रिटर्न मिलता है। भले कोई कहता है कि मैं निष्काम सेवादारी हूं, बाबा कहे निष्काम तो कोई हो ही नहीं सकता, उसका रिटर्न उसको जरूर प्राप्त होता ही है। तो अब बच्चों को पुरुषार्थ में क्या करना है, तो आज बाबा याद कर रहे हैं कि बाबा को सर्विसेबल हैंड्स चाहिए, जो अच्छी सर्विस करते हैं, ऐसे हैंड्स चाहिए। किस लिए? तो बाबा कहे, म्यूजियम खोलो और म्यूजियम में समझाने वाले अच्छे चाहिए। मैं समझती हूं साकार बाबा के समय एक दिल्ली में म्यूजियम था और एक जयपुर में म्यूजियम था और तीसरा बाबा यहां बनवा रहे थे। तो दिल्ली के म्यूजियम का नाम रखा होगा स्पिरिचुअल म्यूजियम। तो बाबा कहे, ये नाम ठीक नहीं है, इस नाम को भी पुनः सोचा जाए और कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को प्रेरणा भी देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं, फिर समझाने वालों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते कि जब भी किसी को समझाते हो तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति जरूर रहे, तभी तो उसको तीर लगेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? कौन किसके कर्जदार है? वैसे तो हम बच्चे ही कर्जदार होते हैं, भले ये बाबा की निर्माणता है जो बाबा कहे मैं कर्जदार हूँ, लेकिन बाबा हम बच्चों की इतनी पालना कर रहे हैं तो उस पालना के भी हम कर्जदार हैं। उत्तर है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। अगर चावल मुट्ठी से मैल मिलता है तो कितना फ्राक दिल होना चाहिए। लेकिन साथ में बाबा ये भी अटेंशन खिंचवाते कि बच्चे, मैंने बाबा को दिया ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम बाबा को क्या देते, जो करते हैं अपने लिए ही करते हैं। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना, बाबा के म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग से बाबा शुरू करते हैं। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। बाबा को विचार सागर मंथन चलता रहता था कि कैसे सेवा करें, कैसे सेवा को बढ़ाए। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहां बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है, ये भी बाबा ने रिजल्ट बताई। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। उस समय शुरू शुरू में पांडव भवन में ही ये म्यूजियम खुला था, तो दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता, करेक्शन करते बाबा। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का आज के संसार में दो प्रश्न ब्रह्मा कुमारी के लिए होता है। पहला प्रश्न कि आप भारत की क्या सेवा करते हो, और दूसरा प्रश्न आपका खर्चा कैसे चलता है, है ना? ये दो प्रश्न जरूर होते हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है और आप भारत की क्या सेवा करते हो। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, क्या कहेंगे? बाबा का जवाब तो यूनिक होता है, कोई वहां तक सोच नहीं सकते हैं कि आज की बाबा की मुरली में क्या कहा। तो बाबा कहे, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? फॉरेस्ट को गार्डन बना रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हैं? आया दिमाग के अंदर ये जवाब तो आता ही नहीं था। भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया, कैसे होता है। कल ही नीचे बनास डेयरी वाले आए हैं, उनके लगभग 4-5 ग्रुप अभी चल रहा है उन लोगों का, तो कल ही ये प्रश्न पूछा, आपका खर्चा कैसे चलता है। तो हमने कहा जिसके 10 लाख भाई बहने हैं, इतना बड़ा परिवार हो, उसको पूछो आपका खर्चा कैसे चलता है तो कैसा लगेगा। बोलो हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं हैं। बाबा की जब ये मुरली चली थी तो उस समय भारत के अंदर कई राज्य बने हुए थे राजाओं के, और उस समय कहा जाता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर के एक एक राजाई को खत्म किया था और भारत में उनको शामिल कर दिया था, तो उनकी सॉवरेनिटी को खत्म किया था। तो इसलिए बाबा उस रेफरेंस में कहते हैं वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है, जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए करते, लेकिन श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको भी पता नहीं है तुम्हारा नाम मशहूर है। किस रूप में मशहूर है? हाँ, बाबा कहे तुम्हारा नाम मशहूर है, कौन सा नाम मशहूर है? हाँ? तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, अभी है ना। तो बाबा कहे अननोन वॉरियर्स, वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते ही नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है, वॉरियर्स के रूप में कोई रजिस्टर में नाम नहीं है, तुमको कोई हथियार पवार नहीं है, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सतो प्रधान बन जाएंगे तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, जो है परंतु देखने में न आए, गुप्त है। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता, जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को इन आंखों से देख नहीं सकते हो। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। विश्व युद्ध होगा, वो लड़ेंगे, लेकिन बाबा कहे राज्य तो उनके हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो हम ही कौन है। पहला टाइटल मिला तुम अननोन वॉरियर्स हो, फिर बाबा कहे तुम जानते हो कि हम ही कौन है। दूसरा क्या टाइटल मिला होगा, तुम्हें कौन हो, क्या कहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सबको स्मृति नहीं रहती है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए बाहर वाले को सभा में बिठाया नहीं जाता है। बाबा की इंद्रप्रस्थ की सभा, उसमें बाहर वालों को बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। बुलाते जरूर है, समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइडग्रूम। वो कहते ही है सर्व का सदगति करने, सर्व की सदगति करने के लिए बाबा आते हैं। तो वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, ब्राइड ग्रूम है, हम आत्माएं सभी ब्राइड्स हैं, तो ब्राइड्स का श्रृंगार भी वही कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है, फिर बाबा मिसाल देते, उस जमाने में एक बहुत महंगी गाड़ी होती थी जिसका नाम था रोल्स रॉयस, है ना, रोल्स रॉय। तो बाबा कहे रोल्स रॉयस में इंजन बहुत अच्छी होती है, तो कंपैरिजन किसके साथ किया है बाबा ने रोल्स रॉय की, अपने साथ। बाप भी ऐसे ही है, इंजन बहुत बहुत बढ़िया है। बाबा हम सबका इंजन है, इसलिए इंजन बहुत बढ़िया है। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई जान जादी नहीं बजाते हो, तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि में, बाप कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त है उनको ये दान देना है, ज्ञान दान उनको देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, वो संगम था त्रेता और द्वापर का। तो बाबा कहे, रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का। यह संगम है, जब राम आता है वो संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी बहुत होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि और पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश जरूर होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है। बाबा कहे, जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, आधा कल्प से सोए पड़े हैं, तो बाबा के उनको जगाना है। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। हाँ, भाई भाई समझ करके ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में भी ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तो रिश्ता भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके, पावन सभी को बनना ही है। कोई योग बल से तो कोई सजाओं से, बनना हरेक को है ही है। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को ही याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। कितने भगवान होंगे, अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं, एक के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्त में थे। सतयुग में हर कोई जीवन मुक्ति अवस्था में थे और कलयुग में उसकी भेंट में सारे जीवन बंद में है। ये किसको भी पता नहीं है। ये सब बातें कौन समझाते हैं? बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर क्या करते हैं? बाबा के बच्चे फिर क्या करते हैं? बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। सब तरफ चक्कर लगाते हैं। बाबा को एक सेकंड लगता है सब तरफ चक्कर लगाने में। सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है मुरली है बाबा की सच्ची गीता, यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते घर में बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। घर में बैठ परमात्मा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। अच्छा, कैसे परिचय देंगे बाबा का, वो भी बाबा सिखाते हैं। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पुकार फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देखकर, बाबा के पात्र देखकर ज्ञान दान भी करना है। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं। क्या है उल्हाना बाबा का, कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। ये बाबा का उल्हाना है। जब बच्चे कहते हैं ना हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते तो लौकिक बाप को तो अच्छे से याद करते, मेरे को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में, तुम ही प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, अपने अंदर देखो बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है। चेकिंग करो, बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। मूल भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। क्या समझाया बाबा ने, कि भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। बाबा कहे ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, भाई भाई ये नारा तो लगाते हैं, लेकिन ब्रदरहुड ये तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा। हमारे द्वारा बाबा बहुतों का कल्याण कराएंगे, बहुतों का कल्याण होगा। परंतु परंतु क्या बाबा कहे, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती है वहां सर्विस करनी चाहिए। कहां कहां सर्विस स्थान है करने का बाबा ने बताया, कहा जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमद् प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यहां सात रोज भट्टी में आकर दैवी परिवार के यहां सात रोज भट्टी में आकर फिर परिवार के साथ तुम रहते हो, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे बेहद का बाप, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं है कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। तो खुशी किस बात की, हम किसके स्टूडेंट्स हैं? हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हो, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ दान करते तो बाबा कहे बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा ना, इसीलिए बाबा कर्जदार हो गए। लेकिन सावधान बाबा करते हैं, मैंने बाबा को दिया ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, क्या चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना, राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। पहले के समय में राजाओं को मिलने जब जाते थे तो नजराना ले जाते थे, गिफ्ट ले जाते थे, उसको नजराना कहते थे। और फिर बाबा कहते हैं, बाबा का अनुभव था ना, बाबा राजाओं से मिलने जाते थे तो नजराना ले जाते थे, तो कहते राजाएं कभी हाथ नहीं लगाते थे, सेक्रेटरी को इशारा देते ये ले लो। तो पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे। नहीं, गुह्य बात बाबा ने बताई, अगर कलयुगी राजा ही नहीं लेते थे तो शिव बाबा तो दाता है, वो कैसे लेंगे। इसलिए बाबा कहे ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को दिया। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे, ये बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो। देखो, राजाओं का राजा बनाने वाला बाप, तो उनके आगे भी तुम आते हो और रखते हो, ये खाली क्या होता है, नजराना होता है। परंतु फिर भी बाबा तो रखता नहीं, वो नजराना भी रखता नहीं है, बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, मैंने बाबा को दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पद्मपति बनते हो, वहां तुम पद्मपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है, बाबा तो जानता है, कई बच्चे हैं फ्राक दिल भी है, तो कई फिर मनहूस भी है। बाबा कहे कई बच्चे तो बड़े फ्राक दिल है तो कई मनहूस भी है, समझते ही नहीं कि हम पद्मा पद्म पति बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, देने वाला तो कौन है, बाबा ही है। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं, इनडायरेक्ट किया तो भी दूसरे जन्म के लिए मिल जाता कदम गुना करके, तो बाबा कहे जब हाजिर है और देते हैं तो 21 जन्म के लिए वापस वो दे देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, साकार बाबा के समय तो फिर भी थोड़े थे, तो भी बाबा कहते देखो ढेर बच्चे हैं, माना उस समय बाबा ने हम बच्चों को संकल्पों में देखा तो जरूर होगा, तो बाबा ने देखा कि अंत समय तक कितने ढेर बच्चे हो जाएंगे। किसको भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं, बाप जाने गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, तो बाप जाने और बाप की गोथरी ये ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, बाप रहते हैं इस गोथरी में लेकिन एकदम साधारण। इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकले तो वो नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योग नहीं तो खिट खिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया क्या करती है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको ये याद नहीं कर सकते हो, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज, वह दिन आया आज जब अंदर में बहुत खुशी है, जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, जिसके लिए कहते थे कि हे भगवान आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, तो बाबा कहे भगवान आकर क्या करते हैं, भगवान आकर क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो कितना खुश नसीब कहेंगे जिसको भगवान ने अडॉप्ट किया, वो कितना खुश नसीब होगा। तो हम सभी कितने खुश नसीब है, तो ये नशा चढ़ता है, कितना खुशी में रहना चाहिए। देखो बाबा कैसी कैसी पॉइंट सुना करके भी बच्चों को नशा चढ़ा करके भी खुशी में ले आने का प्रयत्न करते थे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी क्या करती है, गंवा देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है। पहली पॉइंट, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। अपने पद्मा पदम भाग्य का क्या करो, सिमरण करो और खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, यही दृष्टि पक्की करनी है तो बेहद तो देह को नहीं देखना है। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि कहां भी भटकने नहीं चाहिए, भटकाना नहीं है। वरदान, आज का बाबा का बहुत मधुर वरदान है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। हमारा सर्व संबंध एक बाबा से है, तो संबंध की शक्ति से क्या करना है, अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल इंजन के रूप में मिल प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निर्विघ्न स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहेगा। जो बाबा कहे कि स्वयं को जिस रीति से संबंध में हम रखेंगे तो उसी संबंध के आधार से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग भी सदा प्राप्त होता रहेगा, होता रहता है। तो आपके पास संबंध की शक्ति है, आपके पास संबंध की शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले। अर्जी करने की जरूरत नहीं, बिन मांगे ही बाबा सब कुछ दे देता है। तो बाबा कहे सदा राजी रहने वाले, राजी रहने वाले पर। आज का स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में क्या करो, साक्षी होकर कोई भी प्लान को सोचो लेकिन क्या करो, साथ में सेकंड में प्लेन स्थिति। प्लान बनाओ, प्लान बनाकर विदेही बनकर के प्लान बनाओ और प्लान बनाने के बाद प्लेन स्थिति, एकदम बुद्धि को निर्संकल्प कर दे, प्लेन स्थिति बनाते चलो। तो कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो, ताकि जो बाबा कहते हैं हमेशा बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। तो मालिक बनकर प्लान बनाओ और बालक बनकर के प्लेन बुद्धि वाले बन जाओ। आज का अव्यक्त इशारा है, अप्रैल मास का संस्कार मिलन की रास करने के लिए बाबा ने प्रेरणा दी है। तो अव्यक्त इशारा है, बाप दादा से तुम मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है कौन सा? आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो, मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो, कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज एक लंबे समय के बाद उषा बहन जी हम सभी के बीच में प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनाने के लिए पहुंचे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली बजा के दीदी का स्वागत करें। और मुरली भी समय से पूरी हुई है, तो अगर दीदी जी चाहे तो 5-7 मिनट कुछ विशेष सेवा समाचार भी सुनाएं जरूर, फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे।
सेवा समाचार में तो बाबा ने इस साल आरंभ में जनवरी मास में ही अयोध्या का टूर कराया था। वैसे हमारे मन चित्त में तो नहीं था कि जाने का मिलेगा, लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा 3-4 साल पहले मैं शिकागो गई थी, जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के द्वारा स्वामी विवेकानंद का 150 साल मनाया था। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो था, जिन्होंने 150 साल वहां सेलिब्रेट किया था, तो उस समय मेरे को एज अ स्पीकर उन्होंने वहां पर निमंत्रण दिया था। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, VHPRSS सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो तब से लेकर के उनके मेलिंग लिस्ट में मेरा नाम है। तो मुझे तो मालूम नहीं था, हर बार उनका मेल आता रहता था। कभी भी कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता था तो जैसे मेल आता है, लेकिन अयोध्या के समय जो है निमंत्रण जब आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई लोगों ने कोशिश किया था कि अयोध्या में निमंत्रण मिले। हमारे करुणा भाई ने तो बहुत कोशिश किया था, उन्होंने टिकट भी बुक करा दिया था कि बाद में बहुत महंगी होगी, जा नहीं सकेंगे। बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको बहुत स्ट्रिक्ट था, मिल नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि विदेश के कनेक्शन से उनके मेलिंग लिस्ट में होने कारण ये निमंत्रण मेरे पास आया था। तो पहले फोन आया था और कहा कि आपको हम निमंत्रण भेज रहे हैं। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन फिर जब निमंत्रण आया तो पीछे लिखा था कि 5 किलोमीटर चलना होगा, आपको अकेले को, जिसको निमंत्रण है उसको ही अकेले को जाना होगा, साथ में कोई लेके नहीं जा सकेंगे। तो मैंने सोचा 5 किलोमीटर कौन चलेगा, उसे तो बाद में जाकर के देख के आएंगे। तो जाने का मन नहीं था, मैंने अंदर से सोचा नहीं था कि 5 किलोमीटर चलना अपने बस की बात नहीं है, और ऐसी क्या हमें पड़ी है कि हम जाएं। उसे तो जब बाद में सबके लिए खुला होगा तब जाएंगे हम, बड़े सम्मान के साथ ले जाएंगे आप ही। लेकिन फिर उसके बाद जब महसूस किया कि सब जगह जो है बड़ा कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, तो मैंने सोचा कि पूछते तो सही भाई साहब को। तो मैंने ब्रिजमोहन भाई से पूछा कि ऐसे ऐसे निमंत्रण आया है, क्या मुझे जाना चाहिए? तो कहा जरूर जाना चाहिए, बहुत सेवा होगी, इतने बड़े लोग आएंगे, कहां कहां से आएंगे, मिलना होगा, करना होगा, जरूर जाना चाहिए। मैं कहता हूं आप जाओ। तो फिर जो है भाई 20 तारीख से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ये सोच करके फिर सोचा रात को ही निकलना पड़ेगा। 18 को तो बाबा का प्रोग्राम था, तो रात को ही हम निकले। पहली बार रात की ट्रैवलिंग किया, नहीं तो कभी दादी जी के शब्द याद रहते थे, दादी हमेशा मना करती थी रात को 10 बजे के बाद कभी कहीं ट्रैवलिंग नहीं करना। तो रात की ट्रैवलिंग किया, और रात की ट्रैवलिंग करके हम, क्योंकि कहा कोहरा हो जाता है यूपी में, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, और ये अनुभव था हमें पहले एक बार, तो इसीलिए हम रात को निकले ताकि दिन में यूपी क्रॉस हो जाए और शाम तक हम पहुंच जाए। तो इस तरीके से हम गए, लेकिन क्यों बाबा ले जा रहा है, मन में ये बार बार आ रहा था कि क्यों बाबा ले जा रहा है। तो उस समय जो है वहां जाने के बाद पता चला कि क्यों बाबा ले जा रहा था। मेरे मन में हमेशा एक संकल्प आता था कि जब भी बाबा कहते कि अंत में हर कोई ये कहेगा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, ये हर कोई कहेगा, हर एक के दिल पर बाबा का झंडा लहराएगा। तो मेरे मन में आता था ऐसे कैसे होगा, हर कोई कैसे कहेगा कि मेरा बाबा आएगा। लेकिन वहां जब गए तो क्योंकि हम 2 दिन पहले पहुंच गए थे, 22 तारीख का प्रोग्राम था, हम 19 तारीख शाम को पहुंच गए थे, तो दूसरे दिन जो है जैसे ही हम वहां निकले तो देखा कि हर गली में वही गाना बजता था, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, और क्या झंडे लगाए हुए थे और ये गाना बज रहा था। और फिर जब मोदी जी ने भाषण शुरू किया अपना, तो उस समय भी जो वहां भीड़ थी जिस तरह की, क्योंकि वहां पर जैसे ही गए तो पता चला कि भाई हमको जो पास मिला था, क्योंकि उन्होंने आउट नहीं किया था, वहां जाने के बाद लखनऊ में वो पास लेना था हमको, तो लखनऊ से जब पास लिया तो हमको पता चला कि हम गाड़ी का भी पास दिया और कहा कि ये VVIP धर्माचार्यों के साथ का पास है। तो एकदम मंदिर के गेट के सामने बैठने का व्यवस्था में मिली थी, और तीसरी लाइन में, पहली लाइन खाली थी लेकिन मैं नहीं बैठी, क्योंकि मैंने कहा कहीं बाद में कोई बड़ा आ जाए और उठाए अपने को तो पीछे जाना पड़ेगा, इसे तो पहले से ही एक लाइन छोड़ करके बैठो। तो 2 लाइन आगे की छोड़ दी मैंने, तीसरी लाइन में जाकर के बैठी, और अच्छा किया क्योंकि जो आगे बैठ गए थे सबको उठाया, क्योंकि जब बड़े बड़े आए धर्माचार्य थे तो रविशंकर, रामदेव महाराज, फिर ये सुधांशु महाराज, ये सारे जितने भी बड़े बड़े थे धर्माचार्य, वो सारे जब आए, ये बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे सारे जितने भी आए, मुरारी बापू, सबको आगे बिठाने के लिए जो आगे बैठे थे सबको उठाया। तो अच्छा हुआ मैं तीसरी लाइन में ही बैठी थी, और देखा कि एकदम बाबा ने ऐसा स्थान दिया था बैठने के लिए भी, लेकिन हाँ क्योंकि मैं अकेली थी। दूसरा, जैसे कहा कि 5 किलोमीटर चलने का, तो मन में बार बार आ रहा था, लेकिन अपने मुकेश भाई है तो उन्होंने एक महाराज को फोन किया था कि महाराज जी हमारी बहन जी आए हैं, तो वो अकेले हैं, उनके साथ तो कोई जाएगा नहीं, तो आप उनको साथ में ले जाना। तो कहा जरूर ले जाएंगे। तो वो खड़ा रहा गेट पर, इंतजार करता रहा, पूछा फोन करके आप कहाँ हो, हमने कहा बस पहुंच रहे हैं। वैसे उन्होंने अगले दिन ही बोल दिया था कि 9 बजे पहुंच जाना, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत पीछे बैठने का मिलेगा, वहां कोई का सीट रिजर्व नहीं होगा। तो इसीलिए हम 9 बजे पहुंच गए थे, तो उन्होंने बैटरी गाड़ी में ही हमको साथ में बिठा दिया, और बैटरी गाड़ी में गेट से लेकर के मंदिर तक, तो मुझे तो इतना भी चलना नहीं पड़ा, बाबा कितना ध्यान रखता है ये अंदर महसूस हुआ। और फिर जो है जब मोदी जी ने भाषण आरंभ किया और उन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, तो उस समय मेरे मन में जो कल्पना की चल रही थी बात कि बाबा जब कहते कि हर कोई कहेगा कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा, जब वो बोल रहा था तो उसके साथ सब लोग बोल रहे थे कि हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया, तो मैंने कहा, तब महसूस किया बाबा ने जैसे एक अनुभव कराया कि कैसे सब लोग कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया, ये अंत में इसी तरह का दृश्य होगा। और हो सकता है कि ऐसी कोई बड़ी हस्ती के द्वारा ही जैसे कहा जाएगा बड़े स्टेज से, तो जब वो बोलेंगे तो उसके साथ सारा जो बोलेंगे, सारी दुनिया बोलेगी कि हाँ हमारा बाबा आ गया। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव, और जैसे ही उसने ये कहा और उसी के बाद जैसे वो हेलीकॉप्टर आए और पुष्प वर्षा करने लगे, तो अधिकतर जहां हम लोग बैठे थे, धर्माचार्य सारे बैठे थे, वहीं पुष्प वर्षा दो हेलीकॉप्टर के द्वारा हुई, दूसरी जगह पर तो नहीं हुई। तो इसीलिए जो है महसूस हुआ कि जब ये शब्द कहा जाएगा तो सचमुच बाबा भी शायद वतन से पुष्प वर्षा जरूर करेंगे। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था मुझे, ऐसे मेरे मन की कल्पना का घोड़ा दौड़ रहा था कि क्या क्या अंतिम समय होगा, तो ये जैसे बाबा मुझे साक्षात्कार कराने के लिए ही ले आए, नहीं तो तब तक मेरे को ये था कि आखिर क्यों जा रही हूँ मैं, बाद में भी तो जा सकते थे, क्या सेवा होगी। लेकिन फिर पता चला, एक एक से मिलना भी हुआ, लेकिन फोटो नहीं खींच सकते थे इसलिए, क्योंकि मैं फोटो खींचने के लिए मैं जाऊं तो मिलूंगी कैसे, या मिलूं या कोई फोटो, तो साथ में तो कोई था नहीं, तो फोटो नहीं खींच पाई मैं। और फिर जब मैं उनका फोटो खींचने के लिए खड़ी होती थी तो देखा कि इतने धर्माचार्य वहां आ गए थे, तो वो भाई जो खड़े किए थे वॉलंटियर्स, वो बार बार मेरे को कह रहा था, बहन जी आपकी सीट चली जाएगी, फिर मेरे को नहीं कहना, बहन जी आप अगर उठेगी ना आपकी ये सीट चली जाएगी, फिर मुझे नहीं कहना कि मेरे को दूसरी कुर्सी ला करके दो, मैं कहीं से, क्योंकि कई धर्माचार्य के चेले फिर नीचे बैठ गए, तो कहा ये सीट अगर चली गई ना फोटो खींचने नहीं जाओ, फोटो बाद में भी मिल जाएगा, आप फोटो नहीं खींचो नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी। वो बार बार मुझे कह रहा था कि आपकी सीट चली जाएगी, बहन जी फोटो खींचना छोड़ो। मैं फिर भी खड़ी होती थी, वो पुष्प वर्षा जब हो रही थी, भाई हम कुछ तो फोटो ले ले, तो बार बार वो मुझे कह रहा था, तो मेरे को लगता था देखो बाबा कितना ध्यान रख रहा है कि हर रीति से। फिर मृत्युंजय भाई ने भी मेरे को फोन किया, आप कहाँ बैठे हो, मैंने कहा मैं तो ये इधर गेट के सामने बैठी हूँ। वो लेट पहुंचे, करीबन 11 बजे पहुंचे, तो तब तक तो सारी सीट चली गई थी, तो कहा बहन जी मैं आता हूँ मेरे लिए कुर्सी रखना, मैंने कहा लोग नीचे बैठे यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, तो कहा फिर तो ठीक है मैं नहीं आता हूँ। लेकिन फिर मैंने जैसे देखा कि कई धर्माचार्य जो है व्हील चेयर पर आए, तो व्हील चेयर पर आए तो उनके चेले सारे अंदर घुस गए, तो मेरे को वंडर लगा कि मेरे को भी व्हील चेयर लेनी चाहिए थी, तो मेरे साथ कम से कम दो तीन तो अंदर आ जाते थे, तो बाद में ये तो ख्याल आया, लेकिन पहले तो नहीं, क्योंकि जब बाद में लोगों को देखा और मन बाबा जैसे इतना अच्छा अनुभव करा रहा था कि अंतिम दृश्य किस तरह का होगा, तो ये जैसे एक साक्षात्कार बाबा ने कराया, तो इसीलिए फिर उसके बाद कई प्रेस वालों ने इंटरव्यू लिया, तो प्रेस वालों ने जब इंटरव्यू तो सुना होगा आप लोगों ने, तो पहला प्रश्न पूछा, आप राम को भगवान मानते हो, देवता मानते हो, मानव मानते हो, मनुष्य मानते हो, क्या मानते हो? तो मैंने बाबा को याद कि मालूम तो था नहीं क्या प्रश्न पूछने वाले हैं जो तैयारी करके जाए, तो जब ये पूछा कि आप भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, मैंने कहा तीनों ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा नहीं पूछा, परमात्मा पूछते थे तो हमको थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन बाबा तो कहते तुम सब मास्टर भगवान हो, जब हमें बाबा मास्टर भगवान कहते तो भगवान तो है ही है। तो मैंने कहा वो भगवान भी है। बोले कैसे? तो याद आया मुझे कि भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना आकाश और न माना नीर। तो जिसने पांचों तत्व को जीता हो, जो प्रकृति जीत हो, वो भगवान है। फिर कहा कि देव है क्योंकि दैवी गुणों से संपन्न है, दिव्यता संपन्न है, इसलिए देवता भी है। और मनुष्य रूप में जन्म लेकर के मनुष्य को सिखाना चाहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो मनुष्य भी है, तो तीनों ही है। तो बड़ा खुश हो गया वो। फिर उसके बाद उसने कहा कि हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी सनातन धर्म को नहीं मानती है। मैंने कहा ये बैज देखा है? इस बैज के ऊपर कौन दिखाई देता है आपको? लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, और लक्ष्मी नारायण तो सनातन धर्म का प्रतीक है, राधे कृष्ण तो सनातन धर्म के ही प्रतीक है। तो हमारे जैसा सनातन धर्म वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम ये अंदर में मानते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो हमारे जैसा सनातन कोई नहीं है। फिर तीसरा कहा कि हमने सुना कि ब्रह्मा कुमारियां जो है अविवाहित रहती है, वो शादी नहीं करती है। मैंने कहा किसने कहा? आपको सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हम सब शादीशुदा है। वो मेरे तरफ देखता रहा, कैसे क्या बोल रही है बहन जी? तो कहा कि मैंने कहा हम तो सब शादीशुदा है। कहा कैसे? मैंने कहा लोग पति को परमेश्वर मानते, हम परमेश्वर को पति मानते हैं। बाबा उस समय ऐसी टचिंग कराता है, मैंने देखा। तो जो है पता नहीं, फिर बाद में उसने सुनाया कि मेरे परिवार वाले भी बीके हैं। वो इंटरव्यू लेने वाला कहता है मेरा परिवार वाले भी बीके हैं, तो इसीलिए आप माइंड नहीं करना मैंने जो आपको प्रश्न पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर डीडी वालों ने, दूरदर्शन वालों ने भी लिया कि आप राम के जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त करते हो। फिर न्यूज 18 वालों ने भी लेना था, वो रूबिका जी यहाँ आके गए थे, तो वहां पर जब मिली तो उसने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू एक घंटा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं सबके साथ में, दूसरे धर्माचार्य को भी बिठा करके उनके साथ में लेना चाहती हूँ, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। कितने बजे आना? कहा शाम को आओ, 8 बजे आओ आप। तो 8 बजे दूसरे भी होंगे तो सबके साथ में आपका इंटरव्यू। लेकिन उसी समय योगी जी आ गए थे, तो योगी जी के कारण जो है वो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने, क्योंकि सारा सिक्योरिटी चेकिंग इतनी थी तो वहां गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। तो फिर वहां फोन किया तो कहा नहीं, हमारा भी कार्यक्रम सारा डिस्टर्ब हो गया है, अभी नहीं ले पाएंगे, तो बाद में देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन गए, तो दूसरे दिन दूसरे चैनल वाले जो थे, सभी चैनल वाले को सरयू नदी पर ही रखा गया था, ताकि वहां पर ही वो लोग जिसका भी इंटरव्यू लेना चाहे ले सकते हैं। और फिर वो महाराज जो थे उसने कहा नहीं, सरयू आरती जरूर करनी है आपको। तो सरयू आरती कराए खास, इतनी बड़ी आरती होती है और सरयू नदी की आरती कराए। खैर हम तो साक्षी होकर के, ताकि उसमें भी क्या बाबा को सेवा करानी है वो देखेंगे लोग, तो नेचुरल है कि लगेगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारियां सनातन धर्म को मानती है, तो उसमें भी एक सेवा समझ करके हमने कर लिया। तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा का ये अनुभव रहा। और फिर आगे बाबा की सेवा में आगे। अच्छा, ओम शांति।